दिन भर 5 फरवरी दिन मंगलवार, मैं हूं अपूर्व कृष्ण। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी ने खत्म किया धरना, फैसले को बताया अपनी जीत।
जीत हमको नहीं मिली, जीत देश का जनता को मिली, जीत कॉन्स्टिट्यूशन का मिली, जीत हमारा सिर्फ इंडिया को मिली।
उधर स्मृति ईरानी ने कहा कोर्ट का फैसला ममता बनर्जी पर कटाक्ष।
इस बात को प्रतिस्थापित करता है कि 2 दिन से चल रहा ममता जी का ये बनावटी प्रोटेस्ट संरक्षण है गरीबों के लुटेरों के लिए।
अफगानिस्तान में अमन के मुद्दे पर मॉस्को में तालिबान और विपक्षी अफगान नेताओं की बातचीत, और मध्य प्रदेश में उद्योगों में 70% नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का नया नियम। पर पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मानसी दास से। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रहे घमासान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा कि वो शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। मामले की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई ना ही बल प्रयोग कर सकती है और ना ही पुलिस आयुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, वो केवल उनसे पूछताछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को दोनों पक्ष अपनी जीत की तौर पर पेश कर रहे हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई समेत प्रभावशाली नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजनीतिक हल तलाशने के लिए तालिबान से मुलाकात की और कहा कि उनकी बैठक सकारात्मक रही। इस बैठक में अफगान सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा शामिल नहीं हुआ। अफगान सरकार ने इस बैठक की आलोचना करते हुए कहा कि इससे देश को कोई लाभ नहीं होगा। बीते महीने लंबी द्विपक्षीय बातचीत के बाद अमरीका और तालिबान ने शांति स्थापित करने के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव का एक मसौदा तैयार किया था। इधर अफगान संसद की एक सदस्य इले अरशद ने कहा है कि किसी वाजिब नतीजे तक पहुंचने के लिए सरकार और तालिबान के बीच सीधे बातचीत जरूरी है। तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अरदोगान ने यूरोपीय संघ पर आरोप लगाया है कि वेनेजुएला में गणतांत्रिक तौर से बनी मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की सत्ता पलटने की कोशिश की जा रही है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन समेत यूरोप के कई देशों ने सोमवार को वेनेजुएला के विपक्षी नेता खुआन गोइदो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी है। गोइदो ने फिर से चुनाव कराए जाने की अपील की थी, लेकिन निकोलस मादुरो ने इससे इनकार कर दिया था। तुर्की की संसद में सत्ताधारी एके पार्टी की एक बैठक में राष्ट्रपति रिचप तैयप अरदोगान ने कहा कि यूरोपीय संघ एक वैध सरकार को खत्म करने की गैरकानूनी कोशिश कर रही है।
Avrupa Birliği'nin de ne olduğu ortaya çıktı. Hani demokrasi? Nedir bu zillet?
हमें अब ये पता चल गया है कि ये यूरोपीय संघ क्या है, ये किस तरह का गणतंत्र है। एक तरफ तो आप नारा लगाते हैं कि गणतंत्र की स्थापना हो, निरपेक्ष चुनाव कराए जाएं, और दूसरी तरफ आप गणतांत्रिक तरीके से चुनी हुई एक देश की सरकार को हिंसा और विरोध प्रदर्शनों के जरिए पलटने की कोशिश कर रहे हैं। ये थे तुर्की के राष्ट्रपति रिचप तैयप अरदोगान के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ब्रितानी प्रधानमंत्री टेरिजा मे गुरुवार यानी परसों ब्रसेल्स में यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जों क्लॉड जूंकर से मुलाकात करेंगी। आधिकारिक तौर पर दोनों नेताओं के बीच ब्रेक्सिट के मुद्दे पर प्रस्तावित मसौदे पर ब्रितानी संसद में हुई चर्चा और मौजूदा तनातनी के बीच के बारे में बातचीत होनी है। हालांकि ब्रसेल्स में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि यूरोपीय संघ ने निजी तौर पर टेरिजा मे से कहा है कि यदि कोई बड़ी बात ना हो तो वो खुद इस मुलाकात के लिए ब्रसेल्स ना आए। यूरोपीय कमीशन की एक प्रवक्ता मार्गरेटिस शिनास ने इस मुलाकात के बारे में अधिक जानकारी दी। कमीशन के अध्यक्ष जों क्लॉड जूंकर लगातार प्रधानमंत्री टेरिजा मे के साथ संपर्क में हैं, और हमें इस बात की खुशी है कि बातचीत को आगे ले जाने के लिए जल्द उनसे हमारी मुलाकात होने वाली है। लेकिन हम एक बार फिर आपको बताना चाहते हैं कि ब्रेक्सिट के मुद्दे पर यूरोपीय संघ और यूरोपीय कमीशन का नज़रिया एकदम स्पष्ट है, लेकिन सही अर्थों में हम ये जानने का इंतजार कर रहे हैं कि ब्रितानी प्रधानमंत्री इस पर हमसे क्या बात करने वाली हैं। ये थे यूरोपीय कमीशन की एक प्रवक्ता मार्गरेटिस शिनास के शब्द। फ्रांस के पेरिस में एक 8 मंजिला इमारत में आग लगने से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। अग्निशमन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हादसे में एक बच्चे की भी मौत हुई है, जबकि 30 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बीबीसी समाचार।
पांच फरवरी दिन मंगलवार, दिन भर में सुनने वालों को अपूर्व कृष्ण का नमस्कार। पश्चिम बंगाल में चिटफंड घोटाले की जांच को लेकर सीबीआई और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच रविवार से जो टकराव की स्थिति बनी थी, आज देश की सर्वोच्च अदालत ने उसे सुलझा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के साथ सहयोग करना ही होगा, मगर सीबीआई भी उनसे केवल पूछताछ ही करेगी, उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। ममता बनर्जी और बीजेपी दोनों इस फैसले को अपने अपने हिसाब से अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। पूरे ब्यौरे के साथ कोलकाता से बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टासाली।
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच ने आज निर्देश जारी किया है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई जांच का सामना करना ही पड़ेगा। पर राजीव कुमार ने जैसा आवेदन किया था कि किसी निष्पक्ष जगह पर वो सीबीआई टीम की सामना कर सकते हैं, तो उसको मान लिया है अदालत। अब मेघालय की राजधानी शिलांग में सीबीआई टीम राजीव कुमार से पूछताछ करेगी। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को गिरफ्तार नहीं कर पाएगी सीबीआई। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद इस इशू को लेकर ही धरने पर बैठी हुई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया है कि ये उनकी नैतिक जीत है।
मोरल विक्ट्री बांग्लार मानुषे, मोरल विक्ट्री देशेर मानुषे। अरे कैसा 2013-14 को देखो, आज 6 साल हो गया चुनाव के पहले, सब याद पड़ा 6 साल पहले का केस। इट इज नॉट इन आवर टाइम। सीपीएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हमने कभी कुछ नहीं किया, एक भी हमने नहीं किया। वो हमारा गवर्नमेंट आने के बाद हम उसको अरेस्ट किया, हम 300 करोड़ रुपया वापस दिया गरीब लोगों को, और हमको बोलता है तुम चोर है, चोर की माई जोर से बोले।
सीबीआई जब जांच शुरू की थी शारदा चिट फंड मामले में, तभी से वो आरोप लगाते आए हैं कि राजीव कुमार जब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की नेतृत्व कर रहे थे, तब उन्होंने कुछ हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन सीज किया था, साथ ही में एक लाल रंग की डायरी भी सीज किए थे, पर बाद में सीबीआई को वो सब सौंपा नहीं गया। इस सिलसिले में राजीव कुमार को कई बार बुलाने पर भी इंटरोगेशन के लिए वो हाजिर नहीं हुए, इसलिए रविवार शाम को उनके घर पर पहुंच गए थे सीबीआई के अधिकारी, जब स्थानीय पुलिस ने पहले उनको रोक दी और बाद में थाने ले गए। सुप्रीम कोर्ट की आज की निर्देश के बारे में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद टिप्पणी करते हुए बोल रहे थे,
ये बहुत ही ईमानदार जाँच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्च न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है? बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे? वो कौन सी ताकतें थीं जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी? तो अब वो आएंगे, जाँच ईमानदारी से हो बड़ी बात है, होना भी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने यह भी पिटीशन फाइल की थी कि जिस तरह उनके ऑफिसर्स को काम करने से रोका गया रविवार, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इस मामले में अदालत ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है, 19 फरवरी तक उस नोटिस का जवाब देना होगा।
और थोड़ी देर पहले ये भी खबर आई है कि ममता बनर्जी ने 2 दिन से चल रहा अपना धरना खत्म कर दिया है, लेकिन अगले सप्ताह वो दिल्ली आ रही हैं। अमिताभ भट्टासाली इस वक्त कोलकाता से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमिताभ, क्या कहा है ममता बनर्जी ने धरना खत्म करने के समय, और क्या है तैयारी दिल्ली की?
देखिए, ममता बनर्जी शाम को जब चंद्रबाबू नायडू आए थे उनकी धरना मंच पर, तो उसके बाद ही चंद्रबाबू नायडू से मिलने के बाद ही ये घोषणा की है कि अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आ चुका है और ये वो मानती है कि वो उनकी जीत है और संविधान की जीत है, तो इसलिए ये धरना अभी खत्म कर दिया जाए। और पर अगले हफ्ते 13 और 14 फरवरी वो दिल्ली जाएंगी और दिल्ली में धरने पे बैठेंगी, ये ऐलान की है ममता बनर्जी ने।
जी, और दिन भर काफी गहमा गहमी होती रही इस सब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, तो वहां पर ममता बनर्जी इसे अपनी जीत की तरह से पेश कर रही थी।
जी बिल्कुल, और दूसरी एक पहलू ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजीव कुमार जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने एक खत भेजे हैं सीबीआई की डायरेक्टर के पास। वो उसमें वो उन्होंने ये लिखा है कि 8 फरवरी को वो शिलांग में हाजिर हो सकते हैं सीबीआई टीम के सामने इंटरोगेशन के लिए, ये उन्होंने बता दिया है। और दूसरी और सीबीआई ने चुनाव ऑफिसरों के एक टीम तैयार की है जो राजीव कुमार का इंटरोगेशन के लिए तैयार हो रहा है। और ये और एक सूचना भी ये भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक ऑर्डर भेजा गया है कि राजीव कुमार के खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन शुरू किया जाए, क्योंकि उन्होंने वो एक आईपीएस होने के नाते भी होने के बावजूद भी वो ममता बनर्जी के धरना मंच पर गए थे और ये उनको खबर मिला है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और ये एक गैर कानूनी काम है। एक आईपीएस ऑफिसर, एक सेंट्रल सर्विस ऑफिसर ये नहीं कर सकते, तो इसलिए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू किया जाए। पर ममता बनर्जी बोल रही थी कि राजीव कुमार उनके धरना मंच पर नहीं आए थे, वहां जरूर आए थे पर वो सरकारी काम काज के लिए आए थे, वो धरना मंच पे नहीं बैठे थे और इसका जवाब उचित जवाब दिया जाएगा, ये भी ममता बनर्जी ने कहा है।
जी, और संक्षेप में बताएं, योगी आदित्यनाथ की यात्रा को लेकर भी आज सुबह से काफी नाटकीय रहा कि वो आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे। बाद में उन्होंने रैली अपना जो आयोजन था उनका पुरुलिया में वो शायद किया, तो इस बारे में क्या बता सकते हैं आप?
उनका हेलीकॉप्टर को पुरुलिया में उतरने का परमिशन नहीं मिला था, एडमिनिस्ट्रेशन ने मना कर दिया था पुरुलिया में हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ ने नजदीकी शहर झारखंड के बोकारो में हेलीकॉप्टर से उतरे और वहां से करीब 50 किलोमीटर गाड़ी से सफर करते हुए वो पुरुलिया में अपने जो जहां सभा बुलाया गया था तो वहां पहुंचे थे और उसको संबोधित किए हैं।
जी अमिताभ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। कोलकाता से ये थे बीबीसी संवाददाता अमिताभ भट्टाशाली। और ये जो सारा मामला है, ऊपर से देखने से लगता है कि घोटाला है और उसे लेकर केंद्र और राज्य उनके बीच टकराव है, लेकिन इसकी तह में है सियासत। और क्या है इस मामले का सियासी पहलू, इसे समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है बीबीसी संवाददाता फैसल मोहम्मद अली। तो क्या है इसका सियासी पहलू फैसल?
इसका दो सियासी पहलू है पूर्व। एक सियासी पहलू तो यह है कि ममता बनर्जी के पक्ष से देखा जाए, और दूसरा सियासी पहलू है जो कि बीजेपी यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से देखा जाए। तो ममता बनर्जी की तरफ से पहले देखते हैं, ममता बनर्जी ने जैसा इसको जीत में बताया है, और पहली बात है कि अगर रविवार से देखें तो जब सीबीआई के अधिकारी वहाँ पहुँचे राजीव कुमार के घर पर, तो उसके फौरन बाद ममता बनर्जी आ गई वहाँ पर धरना देने के लिए। उनका कैडर जो है सड़कों पर आ गया, नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगा, तो एक तरह से समझिए बहुत जल्दी उन्होंने गैल्वेनाइज कर दिया। दूसरी बात जो सामने आई कि चंद्रबाबू नायडू पहुँचे थे, चंद्रबाबू नायडू से पहले आप देखें तो तेजस्वी यादव कल वहाँ आके गए, एम कनीमुड़ी जो कि डीएमके के जो नेता थे, करुणा निधि साहब उनकी बेटी थी, तो दो लोग ये बड़े नेता पहुँचे। इसके अलावा चाहे आप राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल की बात करें, या महबूबा मुफ्ती की बात करें, या उमर अब्दुल्ला की बात करें, या शरद पवार की बात करें, इन सब लोगों ने या तो फ़ोन किया या उनके पक्ष में अपना बयान दिया है, और ये मामला पूरी तरह से संसद में गूंजा है। और एक बात ये मैं बताना चाहता हूँ अपूर्व, कि पहली बार सिर्फ अगर आप टीआरएस को देख छोड़ दें अगर तेलंगाना की, तो उसके अलावा जितना विपक्षी दल है, इवन बीजू जनता दल की जो पार्टी बीजेडी है जो कि हर मामले में तटस्थ रही है, वो इस बार ममता बनर्जी के साथ खड़ी हुई नज़र आई है, जो कि राफेल मुद्दे पर भी नहीं हुआ, जो कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जब जो है अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा जब संसद में लाया गया तब भी जो है उसमें बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टी थी वो अलग हो गए। तो ये एक तो ममता बनर्जी का पक्ष हुआ, दूसरा पक्ष जो है बीजेपी का है। तो बीजेपी का पक्ष है कि उसका देखिए कि बीजेपी की ये बार बार ये बात कही जा रही है कि जो उत्तर प्रदेश है बिहार में है उसकी सीटें घटेंगी, साथ साथ जो है मायावती की और अखिलेश यादव की दोनों का गठबंधन हो गया है, कांग्रेस कह रही है कि पूरी ताकत से लड़ेंगे, बिहार में जो है वहाँ नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरह की हवा बताई जा रही है। तो स्थिति यह है कि अब पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहाँ से बीजेपी को अपनी बड़ी सीटें लानी है और संभावना है, क्योंकि उत्तर पूर्व की भी बात देखें तो सिटीजनशिप बिल जो है वहाँ नागरिकता कानून का जो संशोधन हुआ है उसको लेके काफ़ी नाराजगी है, तो वो बीजेपी के लिए मजबूरी है कि बीजेपी जो है वहाँ जाए। और ममता बनर्जी का कन्फ्रंटेशनिस्ट जिसको कहा जाता है पहले से वो लेफ्ट के खिलाफ किया है, तो वो वहाँ भी हो रहा है।
जी, मतलब सारी सियासत की जो गाड़ी है वो एक तरह से आम चुनाव उसकी धुरी है,
आम चुनाव की धुरी है, बिल्कुल।
जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद फैसल मोहम्मद अली। روس کی راجدھانی ماسکو میں آج طالبان ودروہیوں اور افغانستان کے وپکشی نیتاؤں کے بیچ ایک بیٹھک ہو رہی ہے۔ پورو افغان راشٹرپتی حامد کرزئی اس کی اگوائی کر رہے ہیں۔ افغان سرکار نے بیٹھک کی آلوچنا کی ہے اور کہا ہے کہ اس کا الٹا اثر ہوگا۔ پچھلے مہینے طالبان ودروہیوں نے قطر کی راجدھانی دوحا میں بھی امریکہ کے ساتھ ہفتے بھر وارتا کی تھی، جس کے بعد امید جتائی گئی تھی کہ شاید جلدی ہی کوئی حل نکلے گا۔ تو آج ماسکو میں جو دو دن کی بات چیت شروع ہوئی ہے، وہ پچھلے مہینے دوحا میں جو بات چیت ہوئی تھی، کیا اس کی اگلی کڑی ہے یا دونوں الگ الگ طرح کی وارتائیں ہو رہی ہیں؟ یہ سوال رکھا میں نے پشاور میں افغان معاملوں کے جانکار ورشٹھ پترکار رحیم اللہ یوسف زئی کے سامنے۔
جو مذاکرات دوحا قطر میں ہو رہے ہیں، وہ تو براہ راست امریکہ اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان ہو رہے ہیں، اور وہاں تو پچھلے سال جولائی میں یہ مذاکرات شروع ہوئے، اور دوحا میں تین بار اور ابو ظہبی یو اے ای میں ایک بار، تو وہ تو براہ راست ان کے ڈائریکٹ جو ہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، نیگوسیشنز ہو رہے ہیں۔ یہ جو ماسکو میں آج سے ایک میٹنگ شروع ہوئی، یہ تو اس کو آپ ایک کانفرنس سمجھ لیں، یہ کوئی آپس میں براہ راست مذاکرات نہیں ہے، اور اس میں امریکہ کے نمائندے بھی نہیں ہیں، افغان حکومت کے بھی نمائندے نہیں ہیں۔ اس میں تو طالبان کا ڈیلیگیشن گیا ہے، پہلے بھی یہ ماسکو جا چکے ہیں، اور وہاں پہ افغانستان سے کچھ سیاسی لوگ، کچھ قبائلی ٹرائبل ایلڈرز، کچھ علماء، اس طرح کے لوگ گئے ہیں۔
یہاں بھی طالبان کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں، اور کیا طالبان کے وہی لوگ رہتے ہیں یہاں جو دوحا میں بھی رہتے ہیں؟
جی، دوحا میں طالبان کا سیاسی کمیشن کا دفتر ہے، اور اس کے پہلے جو سربراہ تھے، ہیڈ تھے شیر عباس تانکزئی، تو انہوں نے ہی طالبان کی ڈیلیگیشن کی قیادت کی تھی اور امریکہ سے مذاکرات کیے تھے۔ اب وہی شیر محمد عباس تانکزئی ماسکو بھی گئے ہیں، 10 رکنی ڈیلیگیشن ہے، تو یہ طالبان کا جو سیاسی کمیشن ہے اسی کے لوگ ہیں، کافی لوگ وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے امریکہ سے مذاکرات کیے ہیں۔
اور افغان سرکار، انہوں نے اس کو کریٹیسائز کیا ہے، اس کی آلوچنا کی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ اس کا تو اثر الٹا ہوگا، تو وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟
افغان سرکار جو ہے، ایک تو اس کے جو مخالفین ہیں افغانستان میں، جو کہ صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ کے مخالفین ہیں، اپوزیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور دو تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ جولائی میں ہونے والے صدارتی انتخابات چناؤ میں اشرف غنی اور ڈاکٹر عبداللہ کے مخالف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبداللہ اور اشرف غنی بھی دونوں ہی کینڈیڈیٹ ہیں، تو پہلے بھی 2014 میں آپس میں مقابلہ کر چکے ہیں، اس بار بھی وہ کریں گے۔ تو اس میں اب یہ ہے کہ افغان سرکار نے اس لیے آلوچنا کی ہے کہ ایک تو اس کے مخالفین ماسکو گئے ہیں، افغان سرکار یہ سمجھتی ہے کہ جو مذاکرات طالبان سے ہو رہے ہیں وہی ایک طریقہ ہے، اور اسی کے ذریعے بات ہوگی، لیکن طالبان کو افغان سرکار سے بھی بات کرنی پڑے گی، صرف امریکہ سے اگر وہ مذاکرات کریں گے اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ماسکو کانفرنس ہے، روسی سرکار تو کہتی ہے کہ یہ ہم نے نہیں منعقد کی، بلکہ یہ جو افغان روس میں رہتے ہیں ان کی کوئی سوسائٹی ہے، انہوں نے یہ کانفرنس منعقد کی ہے، لیکن ظاہر ہے روسی سرکار کی مرضی کے بغیر اور سپورٹ کے بغیر کیسے اتنی بڑی کانفرنس ہوگی۔ تو میرے خیال میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں، امریکی افغان خاص طور پہ، کہ یہ روس کی جو یہ اس طرح کی سرگرمیاں ہیں، کوششیں ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہوگا، لیکن روسی سمجھتے ہیں کہ سارے افغان جو ہیں، چاہے وہ سرکار میں ہیں، سرکار سے باہر ہیں، طالبان ہیں، ان کو ہم لوگ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مل کر بات کریں، کوئی فیصلہ کریں، تاکہ افغانستان میں امن قائم ہو سکے۔
پشاور سے پترکار رحیم اللہ یوسف زئی۔ اور خبروں کا سلسلہ آگے بڑھے اس سے پہلے ایک خاص پرستتی جو آپ ہر منگلوار سنیں گے، نام ہے اس کا تانا بانا۔ بھارت کی ملی جلی سنسکرتی کا تانا بانا، بھارتی سبھیتا سے جڑی باتیں، وہ دیش جہاں بھجن، اذان اور قربانی کی گونج ایک ساتھ سنائی دیتی رہی ہے۔ سبھیتاؤں اور سنسکرتیوں کا انوٹھا سنگم ہے بھارت، وہ الگ الگ رنگوں کے دھاگے جن سے مل کر بنا ہے بھارت، ایسے دھاگے جنہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہی ہے تانا بانا، جس کے قصے سنیں گے آپ ورشٹھ پترکار اور لیکھک سعید نقوی سے ہر منگلوار۔ شروعات میر تقی میر سے، جن کی گنتی اردو کے مہان تم شاعروں میں ہوتی ہے۔ میر نے کیسے بھارت کا سپنا دیکھا تھا، اس کی ایک جھلک دکھا رہے ہیں سعید نقوی۔
اس کے فروغ حسن سے چھمکے ہے سب میں نور، شمع حرم ہو یا کہ دیا سومناتھ کا۔ اسی کے سوندر کا پرکاش چاہے وہ کعبے میں جلتا ہوا دیا ہو یا سومناتھ کا چراغ۔ ہمارے شاعروں نے اتنی باتیں کی ہیں ہم کو اور آپ کو جوڑنے کی، لیکن ہم اس کے باوجود اتنے ایک دوسرے سے دور کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ سومناتھ کا تذکرہ محمود غزنی کا نام لیتے ہوئے اگر ہم کریں گے تو ہم آپ دور ہوتے جائیں گے، لیکن میر کی زبان میں اگر ہم سومناتھ کو یاد کریں گے تو ہم ایک دوسرے کے قریب ہوں گے۔ تو نے بت خانہ توڑ کر ایک مسجد کی نیو تو ڈالی اے شیخ، توڑ کر بت خانہ مسجد تو بنا کی تو نے شیخ، برہمن کے دل کی بھی کچھ فکر ہے تعمیر کی، لیکن تو نے یہ سوچا کہ وہاں جو پروہت ایک پوجا کرتا تھا اس کا دل بھی تو نے توڑا، اس پہ مرہم لگانے کی تو نے کیا تجویز کی؟ یہ بھی میر ہیں۔ کعبہ اگرچہ ڈھایا تو کیا جائے غم ہے شیخ، یہ قصر دل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا۔ کعبہ اگر ڈھایا گیا وہ پھر بن سکتا ہے، لیکن اگر دل کا محل ایک دفعہ ٹوٹ گیا پھر اس کا بنانا ناممکن ہے۔
تو اب سے ہر منگل بار سنیے گا تانا بانا، اور اب رخ مدھیہ پردیش کا، جہاں پر کانگریس سرکار نے ادیوگوں کے لیے 70% نوکریاں ستھانی لوگوں کو دینے کے لیے نیم کو انیواریہ بنا دیا ہے۔ اب اس کا پالن ان ادیوگوں کو بھی کرنا ہوگا جنہیں پچھلی بی جے پی سرکار میں زمین اور سویدھائیں ملی ہے۔ بھوپال سے شورے نیازی کی رپورٹ۔
ودھان سبھا چناؤ کے دوران جاری وچن پتر میں کانگریس نے وعدہ کیا تھا کہ سرکار بننے پر پردیش میں لگنے والے ادیوگوں میں ستھانی لوگوں کو روزگار اپلبدھ کرانا انیواریہ کیا جائے گا۔ اسی کے چلتے سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب پردیش میں لگنے والے ادیوگوں میں 70% روزگار پردیش کے لوگوں کو دینا ہوگا۔ مکھیمنتری کمل ناتھ نے ٹویٹ کر کے اس کی جانکاری دی کہ راجیہ سرکار دوارا پوشت سبھی ادیوگوں میں 70% روزگار مدھیہ پردیش کے ستھانی لوگوں کے لیے انیواریہ کر دیا گیا ہے۔ مکھیمنتری کے وشیش کرتویست ادھیکاری بھوپیندر گپتا نے بتایا،
70% جو ہے ستھانی لوگوں کو جو مدھیہ پردیش کے نواسی ہیں ان کو روزگار کے اوسر اپلبدھ کرانے کا ارتھ یہ ہے کہ جن ادیوگوں کو مدھیہ پردیش کے سنسادھن جیسے کہ زمین، جیسے کہ بجلی اور جو انیہ طرح کی رعایتیں اور چھوٹیں دی جاتی ہیں، ہم ان سے جو ہے اس بات کا کی پرتیبدھتا لیں گے کہ وہ 70% لوگوں کو یہاں کے مدھیہ پردیش کے ستھانیہ لوگوں کو روزگار دیں، کیونکہ جو ہے مدھیہ پردیش میں بے تحاشا 15 سالوں میں بے روزگاری پھیلی ہے۔ آج جو ہے ایسا انمانت کیا جاتا ہے کہ لگ بھگ 60 لاکھ لوگ یہاں پر بے روزگار ہیں نوجوان، تو ان کو روزگار کون دے گا؟ دوسرے راجیہ تو دیں گے نہیں۔
وہیں ادیوگوں سے جڑے لوگوں کا ماننا ہے کہ نئے ادیوگوں کو ایسا کرنے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی اور وہ اپنے شیتر میں اسے لاگو کر سکتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ پہلے سے لگے ادیوگوں میں ایسا کر پانا آسان نہیں ہے۔ سرکار نے پچھلے کچھ سالوں میں لگے ادیوگوں کو بھی نوٹس جاری کر کے پوچھا ہے کہ ان کے وہاں پر ستھانی اور باہر کے کتنے کرمچاری کام کر رہے ہیں۔ پیتھم پور اودیوگک سنگھن کے ادھیکش گوتم کوٹھاری کہتے ہیں،
اس میں یہ بھر تکلیف آتی ہے کہ جو آلریڈی جن لوگوں کو روزگار دیا ہوا ہے ان لوگوں میں 70% تو 30% کا بھید بھاؤ کرنا تو سمبھو ہی نہیں ہے۔ یعنی جو پہلے سے روزگار میں ہیں لیکن نئے جو بھرتی ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، ادیوگوں کو نئی بھرتی میں 70% لوکل رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ پرابلم ضرور ہے کہ اگر سرکار یہ کہہ رہی ہے، ابھی جو لوگوں کے پاس نوٹس آئے ہیں کہ اب آپ کے یہاں جتنے امپلائی ہیں ان کا الگ الگ بتائیے کہ 70% آپ نے رکھا ہے کہ نہیں لوکل لوگوں کو، نہیں تو بینیفٹس آپ کو کنٹینیو ہو جائیں گے، تو یہ تو
गलत है।
वहीं दूसरी समस्या उद्योगों को स्थानीय स्तर पर स्किल्ड मैन पावर मिलने की हो सकती है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर स्थानीय स्तर पर उतने लोग नहीं मिल पाए। उस स्थिति में उद्योगों को स्वयं ही उन्हें ट्रेनिंग देकर तैयार करना होगा। वहीं सरकार के नुमाइंदों का मानना है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है और कई राज्यों ने अपने वहां पर इस तरह का प्रावधान कर रखा है ताकि स्थानीय नौजवानों को रोजगार दे सकें। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज भोपाल।
और अब खास रिपोर्ट भारत प्रशासित कश्मीर से, जहां सेना के सामने सरेंडर करने वाले चरमपंथियों ने एक फोर्स तैयार की थी जिसे इख्वानी या सरकारी बंदूक बरदार कहा जाता है। इस दस्ते से जुड़े और बाद में सेना में काम करने वाले नजीर अहमद वानी को हाल ही में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। हालांकि ये दस्ता 15 साल पहले ही तोड़ दिया गया। तब से इस दस्ते के लोग किस हाल में हैं, ये जानने की कोशिश की श्रीनगर से माजिद जहांगीर ने।
20 दिसंबर 1994 जाड़ों के सर्दतरीन दिन थे, जब गुलाम नबी लोन आका शफात ने कश्मीर घाटी के अनंतनाग में भारतीय सेना और पुलिस अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर कश्मीर में सेना के साथ मिलकर चरमपंथियों के खिलाफ अभियानों का हिस्सा बने।
1999 में निकले अपनी कश्मीर से पाकिस्तान गए ट्रेनिंग करने के लिए, मगर उस टाइम हमें ये मालूम नहीं था कि हम क्या करने जा रहे हैं।
वर्ष 2003 में इख्वान को पूरे कश्मीर में जब उस समय की सरकार ने तोड़ दिया तो लोन और उनके जैसे सैकड़ों नौजवानों को बुरे दिन देखने पड़े।
हमने तब से आज तक वो कोई दफ्तर छोड़ा नहीं जहां हम गए नहीं, मगर तब से आज तक कोई रोजगार हमें नहीं मिला।
वर्ष 1994 में हजारों चरमपंथियों ने कश्मीर में आत्मसमर्पण कर इख्वानुल मुस्लिमीन नामी संगठन बनाई और चरमपंथियों के खिलाफ कश्मीर में सेना के साथ मिलकर अभियानों का हिस्सा बने। कश्मीर में आम जुबान में इन लोगों को या तो सरकारी बंदूक बरदार के नाम से जाने जाते हैं या फिर इख्वानी के नाम से। चरमपंथियों ने आज तक सैकड़ों इख्वानियों को मार दिया है। पूर्व इख्वान कमांडर लियाकत अली खान, जो कि सख्त सुरक्षा के बीच आज भी रहते हैं, कहते हैं कि सरकार ने सिर्फ 25% इख्वान के साथ काम करने वाले लड़कों का पुनर्वास किया।
बिल्कुल, जब इख्वान बनी, जब इख्वान ने हिंदुस्तानी आर्मी का साथ दिया, हिंदुस्तानी आर्मी के हाथ मजबूत किए, उसमें यही था कि एक अंडरस्टैंडिंग यही थी कि जब नॉर्मलसी कश्मीर में होगी और जब पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा, जब डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी, तो उसके बाद जो है, जो ये इख्वान में इख्वान के साथ जितने भी लोग थे, कि इनको जो है रिहेबिलिटेट करें।
वो कहते हैं कि हाल ही में जिस तरह से नज़ीर अहमद वानी को भारत सरकार ने सम्मानित किया, उसी तरह उनके दूसरे लड़कों को भी उनकी कुर्बानियों का सिला दिया जाए। नज़ीर अहमद वानी पहले चरमपंथी थे, बाद में आत्मसमर्पण कर इख्वान के साथ काम किया और फिर सेना में भर्ती हो गए। खान कहते हैं कि मेरे जैसे सैकड़ों और हजारों कश्मीरी नौजवान चरमपंथी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एकजुट हो गए और उनके खिलाफ लड़ना शुरू किया। खान कहते हैं, जब वर्ष 2003 में उनके साथ काम करने वाले लड़कों को वापस अपने घरों को लौटना पड़ा तो ये उनके लिए कोई आसान काम नहीं था।
इख्वान जब इंटैक्ट भी थी, उस वक्त भी जो है एक तरह से हमें जो है सोसाइटी हमें एब्जॉर्व करने में जो है उसमें प्रॉब्लम्स थे, और जब उसके बाद इख्वान डिसबैंड हुई तो जो लोग वापस घरों को चले गए या जो लोग दूसरी जगहों पर माइग्रेट होके शिफ्ट हुए, तो सोसाइटी में बड़ी जो है प्रॉब्लम्स हुई।
उस समय के जम्मू कश्मीर में राज्य गृह मंत्री अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि इख्वान के ये लोग भारत सरकार से पूछे कि उनके साथ क्या वायदे किए गए थे।
ये थी श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट। और आप सुन रहे थे दिन भर। आज दिन भर में सभा समापन का समय हो चुका है, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार मानसी दास से।
बीबीसी समाचार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच चल रहे घमासान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से कहा कि वो शारदा चिटफंड घोटाले की जांच कर रही सीबीआई के साथ सहयोग करें। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई समेत प्रभावशाली नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने राजनीतिक हल तलाशने के लिए आज तालिबान से मुलाकात की और कहा कि उनकी बैठक सकारात्मक रही। बीबीसी समाचार।
तो दिन भर में आज इतना ही। अब अपूर्व कृष्ण को अनुमति दें। नमस्कार।